नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। तेलंगाना में आज गुरुवार शाम मतदान खत्म होने के कुछ समय बाद ही मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के एग्जिट पोल के नतीजे आने लगेंगे। करीब महीने भर से पांच राज्यों में चल रही चुनाव प्रक्रिया के बाद किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, इसको लेकर जारी अटकलें भी शुरू हो जाएंगी। असली नतीजे तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेंगे। फिलहाल सभी की निगाहें एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों पर टिकी होंगी। मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर, राजस्थान की 199 सीटों के लिए 25 नवंबर, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर तथा तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान कराए गए हैं। इन चुनावी नतीजों का असर अगले कुछ महीनों बाद होने जा रहे लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, लिहाजा ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के लिए बहुत ही अहम साबित होंगे। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में बृहस्पतिवार को दोपहर 11 बजे तक लगभग 20.64% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं को कतारों में खड़े देखा गया। चुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके मंत्री पुत्र के टी रामाराव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और भाजपा के लोकसभा सदस्यों बंडी संजय कुमार तथा डी अरविंद समेत करीब 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनकी पत्नी के शोभा ने सिद्धिपेट में चिन्ह रामा डाका गांव में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव, उनकी बहन और विधान पार्षद के कविता, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सुबह 7 बजे मतदान आरंभ होने के बाद शुरुआती घंटों में अपने मताधिकार का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। इस सौगात में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की रोडवेज बसों में 60 से अधिक आयु की सभी महिलाएं मुफ्त में सफर करने का मौका ले सकेंगी। यूपी सरकार के इस फैसले को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी की योगी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब रोडवेज की बसों में उनका टिकट नहीं लगेगा, इन्हें फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अब तक केवल रक्षाबंधन पर ही सभी महिलाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिलती थी। बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा कराने के उद्देश्य से परिवहन निगम को प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से राज्य में शांति और प्रगति का एक नया दौर शुरू हुआ है। UNLF मणिपुर का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन है जिस पर बहुसंख्यक मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुधवार को लिखा, आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर संभव हुआ। उन्होंने कहा, उनकी सूझबूझ और निरंतर मार्गदर्शन से मणिपुर में शांति और प्रगति का एक नया युग शुरू हुआ है। राज्य में वृद्धि और विकास का एक नया दौर शुरू हो रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति अपना विश्वास जताया है। UNLF के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और 19 साल बाद बाजार में टाटा का पहला IPO आज लिस्ट हो गया। टाटा का IPO आते ही बाजार में छा गया और उसका रेट इश्यू प्राइस से सीधे लगभग 2.5 गुना पर पहुंच गया। टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स गुरुवार को एक्सचेंज पर 140% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए। बता दें कि NSE और BSE पर टाटा टेक के स्टॉक ने 500 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1200 रुपये पर शुरुआत की। बता दें कि टाटा टेक्नोलॉजीज के 3042 करोड़ रुपये IPO को 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बोली मिली। ऑफर में शेयर्स का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन करीब 70 गुना रहा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे गए कोटा को 16 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों से मिला सब्सक्रिप्शन 203 गुना रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने एक भारतीय नागरिक पर अमेरिका में खालिस्तानी नेता की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। बुधवार को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में ये बात कही गई है। बयान में कहा गया, आज न्यूयॉर्क शहर के दक्षिणी जिले में 52 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता उर्फ निक के खिलाफ न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में उसकी भागीदारी के बारे में केस शुरू किया गया है। उस पर भाड़े के बदले हत्या कराने का आरोप है। गुप्ता के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है सिवाय इस तथ्य के कि वो अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय नागरिक हैं। न्याय विभाग के बयान के अनुसार चेक अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुसार 30 जून 2023 को गुप्ता को गिरफ्तार और हिरासत में लिया। उन पर भाड़े के बदले हत्या करने और भाड़े के बदले हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। प्रत्येक मामले में अधिकतम सजा 10 साल की जेल है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।